एक क्लाउड शुरू कर लेते हैं। वाह
प्रोग्रेस
वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ज़ालिक लिमन खशिया रब्बह, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آخری کلاس ہماری آج کی سیرت الصحابہ والخلفاء الراشدین مہدیین والی جو کلاس ہے، تو اس میں ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کی باتیں کر رہے تھے. اچھا، یہ ٹیبل تھوڑی سی اونچی ہے، میں چھوٹا ہوں، ٹیبل اونچی ہے، لیپ ٹاپ اور اونچا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، پیچھے جگہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ نظر آ سکیں. ہارون مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. صحیح، پیچھے اگر جگہ نہ ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، ورنہ جگہ ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما کی بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے. یہ ترتیب میں 10 عشرہ مبشرہ میں سے یہ نویں بنتے ہیں، نائنتھ، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث حضرت جی نے یہاں پہ نقل فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ والعمر فی الجنہ، اس والی حدیث میں حضرت سعید بن زید رضوان کا ذکر نوے نمبر پر کیا، اور آخر میں پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان کا ذکر، تو وہ ہم ان کے بعد پڑھیں گے. تو یہ 10 وہ صحابہ تھے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی نام لے لے کر کے فرما دیا تھا کہ یہ جنت میں ہیں، یہ جنت میں ہیں، یہ جنت میں ہیں، یہ جنت، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، 10 صحابہ جن کو کہ یہ بشارت دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ورنہ قرآن مجید نے ہر صحابی کو بشارت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو بلانکٹ سٹیٹمنٹ تو قرآن مجید نے ہر صحابی کے لیے دی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کلن، سب کے سب، وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب کے ساتھ الحسنہ کی کا وعدہ ہے. الحسنہ کی تفسیر کیا ہے؟ الجنہ، ٹھیک ہے، دی پیراڈائز. تو بس یہ فرق ہے عشرہ مبشرہ میں اور باقی صحابہ میں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنت میں باقی کا پتہ نہیں وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو سعید بن زید کے بارے میں ہم نے جو پچھلی کلاس میں آخری بات پڑھی تھی وہ کیا تھی، وہ کون بتائے گا؟ سعید بن زید کے بارے میں ہم نے آخری کلاس میں کیا بات پڑھی تھی وہ کون بتائے گا؟ سوچنے سے یاد نہیں آتا، نوٹس لکھنے سے یاد آتا ہے. بہت غور سے عمر بھائی سوچ رہے ہیں. تھوڑا سا ٹرکی کوشچن ہے ویسے یہ. جی، میں آپ کو ہنٹ دے دوں پہلے سے، یہ ٹرکی کوشچن ہے. جی، ان کے ابو کا نام زید تھا، ٹھیک ہے. جواب انہوں نے صحیح دیا ہے کہ جی exactly، ٹھیک ہے، ہم دونوں کا جواب صحیح ہے، ان کا تھوڑا سا زیادہ تفصیلی جواب صحیح ہے کہ ہم ان کے بارے میں ایکسپلسٹلی بات نہیں کر رہے تھے پچھلی کلاس میں، بلکہ ہم ان کے ابو کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے ابو کون تھے اور ان کے ابو کیسے تھے اور ان کے ابو نے کیا فرمایا تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور حتیٰ کہ ان کے ابو کے ایک شعر کے بارے میں بھی، جو انہوں نے عربی زبان میں ایک چھوٹی سی پوئٹری جو حضرت نے یہاں پہ نقل فرمائی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس سے اس کے بارے میں بات ہوتے ہوتے پھر तौहीद के बारे में भी बात शुरू हो गई थी, ठीक है, कि तौहीद किस चीज को कहते हैं और तौहीद किस चीज को नहीं कहते हैं। चलिए ये बताएं कि तौहीद किस चीज को कहते हैं, ये हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि तौहीद किस चीज को नहीं कहते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन होने चाहिए ना, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो
तौहीद
तौहीद जो है वो तेरे, आप भी बता दें छोटी, तौहीद को कहते हैं, नहीं अल्लाह के ऊपर फोकस करने को तौहीद कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया अब्दुल्ला भाई ने कि तौहीद किस चीज को नहीं कहते, शिर्क को तौहीद नहीं कहते, और शिर्क क्या है, बीइंग डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, बीइंग अनफोकस्ड, इसको तौहीद नहीं कहते। लेकिन एक और भी बात है तौहीद के बारे में जो हमने पिछली क्लास में बताई थी कि भाई ये तौहीद नहीं है, वो पता है कौन जवाब दे सकता है, वो जवाब दे सकता है कि जिसने क्विज कर लिया हो, ठीक है, तो क्विज हर कोई करता नहीं है, तो जो करता है तो वो ये जवाब दे सकता है। क्या क्विज याद है किसी को, ठीक है, जो लोग नहीं करते ना तो उनको करना चाहिए, तो वो बताएंगे हमें, तो फिर हम उनको क्विज करवाएंगे, वरना फिर हर बंदे को हमने क्विज नहीं करवाया। तो क्विज के अंदर एक सवाल था जो कि पिछली क्लास में इस बात से रिलेटेड था कि तौहीद ये नहीं है कि सारे लोग जो हैं क्या करें, जी हाँ, कि सारे लोग जो है ना वो बस एक काम करना शुरू हो जाएं, ठीक है, तौहीद ये नहीं है कि सारे लोग एक ही काम करना शुरू हो जाएं तो बस तौहीद हो गई, ठीक है। यानी जैसे मुख्तलिफ चीजें बताई थी आपको कि अल्लाह ताला ने, अच्छा कौन सी वाली सूरत से इस्तिदलाल किया था, इस्तिदलाल करने का मतलब होता है, कौन सी वाली सूरत से हमने ये एविडेंस हासिल किया था, प्रूफ हासिल किया था कि तौहीद ये नहीं है, सूरत तो याद होनी चाहिए, वो फाज़े कराम, एक सूरत थी पिछली क्लास के अंदर उसका जिक्र हुआ था, थोड़ा लिख लिया करें, अभी भी कोई नहीं लिख रहा है, सवा एक दो के लिखने के लिए लेकर आएंगे तो लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लिया करें कौन सी सूरत थी जिससे इस्तेदार किया था। अच्छा ऑनलाइन भी जो है वो सही जवाब आया था, शिर्क को नहीं कहते, लेकिन सूरत ऑनलाइन भी किसी को याद नहीं आ रही, एक सूरत आपके सामने पड़ी थी अजी रिप्रेजेंट करने भाइयों को, भाई नजर नहीं आ रहे सर, तो छोटी सी सूरत है, 30वें पारे के अंदर है और सबको याद होगी, नहीं इखलास की बात नहीं कर रहे ना तौहीद की, हम तो कह रहे हैं कि तौहीद क्या नहीं है इसके ऊपर, वो सूरत थी वल्लैल इज़ा यख्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक ज़कर वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्ना सअयकुम लशत्ता, कौन इसका मानी बताएगा, इस आयत का मानी आपके अलावा किसी से पूछते हैं ना, इन्ना सअयकुम लशत्ता, छोटी सी आयत है, तो मानी आता है आप लोगों को कुछ, तो मुझे पता है क्या आता है, इन्ना सअयकुम लशत्ता, ये वही वाला ला है जो कि लयकुनन्ना, आप लोग रट्टा लगा रहे हैं ना आजकल सर्फ के गदान का, वही वाला ला है, लामे ताकीद जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इन नसा अलैकुम लशत्ता, चले आप बता दें,
तो मैं कि मेहनत जो
तुम लोगों, तुम में से हर एक के मेहनतें, तुम में से हर एक के काम डिफरेंट डिफरेंट है, छत्ता डिफरेंट, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, कोई कारपेंटर है, कोई जो है वो ब्लॉक स्मिथ है, कोई फलाना है क्या क्या आयरन स्मिथ है, कोई कोई है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई जो है फलाना है वो, क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही बनाया है, ठीक है ना। अच्छा खाली ये नहीं कि हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे रोल्स भी डिफरेंट बनाए। कुछ असल में हमारे साथी जो है ना बिल्कुल नए हैं आज, ठीक है, वो पहले थे ही नहीं, आ नहीं रहे थे या बाहर से आए हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर रहे हैं। सही है, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रोल्स बनाए हैं हमारे, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को आलिम दीन बनाया, किसी को जो है वो कारी बनाया, किसी को हाफिज बनाया, किसी को फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाया, किसी को ठीक है इन्वेस्टर बनाया, किसी को क्या बनाया, और इसके अलावा और क्या क्या रोल्स बनाए अल्लाह ताला ने, किसी को अल्लाह ताला ने अब्बू बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने अम्मी बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने भैया बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने आपी बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने बेटी बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने बेटा बनाया, ना ये सब क्या है, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे काम डिफरेंट है सारे के सारे, तुम सब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हो और तुम्हारे रोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो तौहीद का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि हम सब एक ही काम करें और हम सब एक ही रोल प्ले करें, सब एक जैसे हो जाए, ठीक है, अल्लाह ताला ये नहीं चाहते हमसे। पता है कौन चाहता है ये हमसे कि हम सब एक जैसे हो जाएं, ये कौन चाहता है? शैतान ये काम चाहता है, ये काम कौन चाहता है? शैतान ये काम चाहता है, ठीक है। इसी वजह से शैतान बहुत मेहनत कर रहा है और शुरू से कर रहा है, आजकल सबसे ज्यादा उसने मेहनत तेज कर दी है कि जो दो अल्लाह ताला ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स बनाए हैं उनमें फर्क खत्म हो जाए। क्या है वो? जी, मर्द और औरत, राइट, मेन एंड वेमेन। अल्लाह ताला ने दो डिफरेंट रोल्स बनाए हैं, है ना, दो डिफरेंट लोग बनाए हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिफरेंट बनाया है, लेकिन शैतान क्या चाह रहा है, शैतान किस चीज पे मेहनत कर रहा है, दोनों एक जैसे हो जाए, दोनों में फर्क खत्म हो जाए। तो अब चले, औरतों मर्दों वाली, कि औरतों को मर्दों जैसा बना रहा है, मर्दों को औरतों जैसा कैसे बना रहा है, ये आप बता दें। आजकल आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो कि मर्द औरत बन रहे हैं और ज्यादा, पहले से भी ज्यादा, वो कैसे? जी ब्राइम, औरतों की नकल करते हैं, किस चीज में नकल जज्बातियत में नकल करते हैं। वो तो बहुत बड़ी वाली बात हो जाएगी, वैसे ही जज्बाती हो जाते हैं जैसे औरतें जज्बाती, मर्द भी जज्बाती वैसे हो जाते हैं, और क्या।
हो सकते हैं जैन वाली। एक तो ये कि आदमी जो है यूज्ड टू बी वो घर का जो है वो रब होता है, प्रोवाइडर होता है, तो
अच्छा,
वो जो है रोज खत्म हो
हम इतनी
गया।
बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, वो आपने बड़ी बात बिल्कुल सही फरमाई है, हम बहुत ही छोटी नीयत की, बस छोटे लेवल की बात कर रहे
इसलिए
हैं, ठीक है। तो आजकल आपने नहीं देखा पोनी टेल्स हैं, पोनी टेल्स और बंस, माशाल्लाह मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं लेकिन बन बना करके आ रहे हैं, मस्जिद भी आ रहे हैं लेकिन बन बना करके आ रहे हैं, पोनी टेल बना के आ रहे हैं, ऊपर से जो है वो बैंड लगाया हुआ है बालों के साथ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये औरतों की मुशाबहत अख्तियार करना है, और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें क्या बतलाया कि अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे शख्स के ऊपर जो कि दूसरे जेंडर की मुशाबहत अख्तियार करे। ये तो काफिर की मुशाबहत अख्तियार करने के ऊपर भी बहुत बुरा मामला होता है ऐसे शख्स के साथ, लेकिन इवन मेन व्हेन दे ट्राई टू बिकम लाइक वुमेन एंड वुमेन व्हेन दे ट्राई टू बिकम लाइक मेन, फिर भी अल्लाह ताला की लानत होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो जब अल्लाह की लानत होगी तो फिर मस्जिद आके नमाज पढ़ने का क्या फायदा हो रहा है आपको, क्या ख्याल है, ठीक है। तो का ये शैतान चाहता है कि यूनिफॉर्मिटी हो जाए। अब आप अमेरिका चले जाए ना, स्विट्जरलैंड चले जाए, तो स्विट्जरलैंड में आप जाके एक चीज आपको खास खास नजर आएगी, मैं तो खैर नहीं गया, मैं बयान में भी ये कह रहा था मुझे नहीं जाना स्विट्जरलैंड में, लेकिन अगर आप तस्वीरें वगैरह देखें या किसी अच्छे, वहां पे आपको नजर आएगा सारे घर जो है ना, तकरीबन सारे घर एक जैसे नजर आएंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी, हर चीज यूनिफॉर्म नजर आएगी, ठीक है। ये हर जगह ऐसा नहीं होता, ये नहीं कि पूरा अमरीका ऐसा ही है एक जैसा, नहीं, लेकिन आपको ज्यादातर बड़ी यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी, ठीक है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम सारे एक जैसे हो काम करना शुरू हो जाए, एक जैसी जो है वो चीजें बनाना शुरू कर दें, एक जैसी जो है वो हरकतें करना शुरू कर दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता हमसे, इन्होंने जवाब सही दिया था जुड़ा बांध करके, तो अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि हम जो काम करें वो हम नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा में करें, ठीक है। जो नबी अलैहिस्सलाम जिनको हलाल कहा किया है वो काम करें, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो, चाहे जो है वो अम्मी हो, अब्बू हो, बेटा हो, जैसे भी हो। तो हम नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई लिमिट्स के अंदर काम करें, और दूसरा क्या कि हम दूसरा क्या कि हम अल्लाह के लिए काम करें, हम जो भी करें वो अल्लाह के लिए काम करें, ठीक है। इसको इखलास कहते हैं और इसी को जो है वो तौहीद कहते हैं। तो ये जो थे ना हजरत सईद बिन जैद, तो जो जैद थे इनके अब्बू, ये नबी अलैहिस्सलाम के नबी बनने से पहले ही ये तौहीद के ऊपर ही थे, और ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये फितरत डाली है कि वो तौहीद को जानता है, ठीक है। अच्छा, फिर इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया लिखा है हजरत जी ने कि एक दफा ना इनको काफी इंक्विसिटिवनेस हुई कि भाई क्या सही है, कौन सा दीन सही है, मुझे तलाश करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मक्का मुकरमा में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स थे, तो इनको जो है वो ईसाइयों के बारे में तो पता था, ठीक है, और इनको यहूदियों के बारे में भी पता था, ये सारी बातें जानते थे कि अल्लाह के प्रॉफिट्स जो हैं वो आए थे, मूसा अलैहि सलाम के बारे में भी जानते थे, सब उनको पता था ना, खुद मानते नहीं थे उन लोगों को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन पता इनको था ये सारी बातें। तो ये जो जैद थे ना, ये निकले तलाश करने के लिए, तो इन्होंने ना फिर दूर दराज के मुल्कों का सफर किया, और ये शाम पहुंचे, शाम में एक यहूदी आलिम से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। अंकल्स लोग अपना थोड़ा सा, जजाकल्ला आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बच्चों को थोड़ा सा याद दिला दिया करें, तो भूल जाते हैं, कुछ छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, याद नहीं आता, तो भी अभी बातें बातें नहीं करनी है, ठीक। तो ये शाम के सफर पे पहुंचे, और वहां पर ना इनकी मुलाकात हुई एक यहूदी आलिम से, ठीक है। यहूदी आलिम से इन्होंने पूछा कि तुम्हारा दीन जो है ना, ये क्या सही दीन है, मैं इसको कबूल कर लूं, मैं यहूदी बन जाऊं। तो वो था तो यहूदी आलिम, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली कि यार सच बोलो इस बंदे के साथ, ठीक है ना। उसने सच डाला, अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाला कि इनको सच बोलो, ठीक है। तो उसने सच बोल दिया, उसने कहा कि अगर तुम अल्लाह ताला के गजब में और गुस्से में हिस्सा लेना चाहते हो ना, तो तुम यहूदी बन जाओ, ठीक है ना। उससे अल्लाह ताला ने सच बुलवा दिया। अब क्यों बुलवा दिया अल्लाह आलम, लेकिन ये जो जैद थे, अल्लाह ताला चाहता था कि ये क्योंकि तौहीद पर तो ये थे ना, अल्लाह ताला को पसंद आ गए थे, तो अल्लाह ताला ने सच बुलवा दिया उस यहूदी आलम से भी, हालांकि वो लोग सच नहीं बोलते ना, जब भी तो सारा गड़बड़ करीब है। अच्छा, तो अगर तुम ना खुदा के गजब में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमारा मजहब हाजिर है, आ जाओ यहूदी बन जाओ, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं भाई, खुदा के गजब से तो मैं बचना चाहता हूँ। फिर ये दूसरी जगह पहुंचे, तो वहां पर अच्छा, नहीं इन्होंने उसी से पूछा कि फिर जो है ना, मैं मुझे कोई दूसरा मजहब बता सकते हो तो बताओ। तो उस यहूदी आलिम ने कहा कि भाई दीन हनीफ जो है ना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, वो है सही मजहब, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना ईसाई थे, ठीक है, बस इतना बता दिया उसने। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये और निकले तलाश करने के लिए, तो ये एक ईसाई राहिब से जाके, ठीक है, एक ईसाई जो उनके मॉन्क्स होते हैं उनमें से जाकर के मिले, तो उनसे इन्होंने उससे इसने इन्होंने जो है ना वो यही वाला सवाल किया, तो उसने भी यही जवाब दिया कि अगर तुम खुदा की लानत का तौक अपने गले में डालना चाहते हो ना, खुदा की लानत के मुस्तहिक बनना चाहते हो ना, तो हमारा दीन हाजिर है, तुम ईसाई बन जाओ, ठीक है। तो उससे भी इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे खुदा की लानत नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे तो कोई ऐसा मजहब बताओ कि जिसमें ना खुदा का गजब होता हो ना खुदा की लानत होती हो। तो उसने भी फिर यही जवाब दिया कि वो तो दीन हनीफ है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, ठीक है, बस इतना जवाब दे दिया। अच्छा, फिर इन्होंने किसी और से बात करी कि बताओ, तो उसने फिर इनको ये कहा कि तुम मक्का मुकरमा वापस लौट जाओ, जहां से तुम आए हो तुम वहां वापस चले जाओ, वहां पर ना अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को भेजना चाहते हैं जो कि दीने इब्राहिमी को दोबारा से जिंदा करेगा, तजदीद करेगा दीने इब्राहिमी की, ठीक है। तो ये जो है फिर लौट के मक्का मुकरमा वापस आ गए, और उसने बता दिया कि तुम उनके दामन को थाम लेना, उनका हाथ पकड़ लेना और उनके साथ लग जाना, ठीक है। तो ये वापस आ गए, तो ये नॉलेज जो थी, जैसे आप लोग पहले भी कई दफा सुन चुके हैं कि ज्यूज को भी पता था कि आखिरी नबी मक्का मुकरमा में आने वाले हैं, और क्रिश्चियंस को भी पता था कि आखिरी नबी जो है वो, क्रिश्चियंस मुराद क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पता था, ठीक है, कि आखिरी नबी आने वाले हैं, तो इनको उन्होंने सही बात बता दी। कुरान मजीद भी हमें यही बताता है कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जानते थे और बहुत अच्छी तरीके से आपसे उसको पहचानते थे। वो जो सूरह माईदा की आयत हमने पढ़ी ना कुछ दिन पहले, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, ये नबी अलैहिस्सलाम आपको उनको ये ऐसे पहचानते थे जैसे कोई बाप जो है वो अपने बेटे को पहचानता है कि यही मेरा बेटा है। कंफ्यूज तो नहीं होता ना कि ये मेरा बेटा है, पता नहीं ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होता अब्बू उनका बेटे के बारे में। तो ये लोग ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते थे 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो अब ये जो है वो वापस आ गए और आकर के उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह मैं आपको गवाह बनाता हूं कि अब मैं दीन हनीफ का ही पैरोकार। ठीक है, ये अल्लाह ताला से दुआ में अल्लाह ताला से इन्होंने कह दिया। ठीक है, लेकिन अब इनको ये नहीं पता था कि भी दीन हनीफ की डिटेल्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी डिटेल्स होती है ना इसको, शरीयत कहा जाता है, ये इनको नहीं पता था। इतना पता था कि शिर्क नहीं करना है, लेकिन बाकी तफसीलात इनको नहीं पता थी। अच्छा, इनकी मुलाकात फिर हुई आमिर बिन रबिया, आमिर बिन रबिया से एक दफा मुलाकात हुई। तो इन्होंने आमिर बिन रबिया को कहा कि मैं उस नबी का मुंतजर हूं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से होगा, तो उनसे कहा कि आमिर अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे ना कि तुम अगर इतना जिंदा रहो कि तुम्हें वो आखिरी नबी मिल जाए तो तुम उनको बता देना कि मैं उन पर ईमान लाया और मेरा सलाम उनको दे देना। ठीक है, तुम उनको मेरा सलाम दे देना। अब अल्लाह ताला की मर्जी के आमिर बिन रबिया जो है वो तो जिंदा रहे लेकिन जैद का इंतकाल हो गया, नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले ही जैद का इंतकाल हो गया। तो बाद में ना आमिर बिन रबिया जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लेकर के आए, मुसलमान हो गए, तो उन्होंने ना हजरत जैद का पैगाम सलाम वगैरह ये सब नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचाया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वालेकुम अस्सलाम का जवाब भी दिया, यानी अल्लाह ताला ने फिर वालेकुम अस्सलाम जैद को पहुंचा दिया उनकी कब्र में, उनके लिए रहमत की दुआ करी और फरमाया कि मैंने जैद को जन्नत में देखा है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ज़ियारत फरमा दी, अता फरमा दी कि उन्होंने जैद को जो है वो जन्नत में देखा। एक दफा हजरत सईद और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने जनाब जैद के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जैद की मगफिरत करे और उस पर रहमत करे, वो दीन इब्राहिमी पर मरा है और कयामत के दिन तन्हा एक उम्मत की हैसियत से उठेगा, एक उम्मत की हैसियत से जैद अकेले उम्मत। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है ना कि भाई उम्मत का मतलब तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल ना। ठीक है, तो अब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप उसी के उम्मत ही कहलाते हैं, उसी ग्रुप के आप जो है मेंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है बल्कि आप अकेले ही बस किसी काम को करने वाले हैं तो आप एक अकेले उम्मत कहलाएंगे। ठीक है ना, अगर अच्छा काम करने वाले हैं तो अच्छा उम्मत वाला कहलाएंगे और बुरा वाला काम कर रहे हैं तो बुरे वाले उम्मत वाले कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो के तौहीद की के ऊपर थे और कोई ग्रुप था ही नहीं जिसका ये शामिल हो सके, मेंबर बन सके, तो अल्लाह ताला उनको अकेले उम्मती के तौर पर कयामत के दिन उठाएगा, लेकिन जन्नत में जो है वो बाकी सारे मुसलमानों की तरह से दाखिल होंगे। ठीक है, किसी को कोई सवाल है अब तक सो फार? अब्दुल्ला भाई किताब है आपको खास मुनासिबत है तारीख के साथ मुनासिबत नहीं है और कोई सवाल है? अच्छा, ऑनलाइन भी चले। अच्छा, फिर उसके बाद हजरत ने जो है वो जैद की उनकी एक बहुत और खूबियां भी लिखी हैं। एक तो खूबी हम पढ़ चुके हैं कि वो तौहीद पर थे, शिर्क से बिल्कुल बेजार थे, दीन हनीफ को उन्होंने कबूल कर लिया था, अल्लाह ताला से दुआ मांग ली थी, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम भी भेज दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन और भी इनकी खूबियां थी कि फरमाया कि ये ना इनकी तबीयत के अंदर नेकी भी फिर गालिब थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मक्का मुकरमा के अंदर एक ट्राइब था, एक कबीला काफिरों का था, कि जो लोग क्या करते थे कि जब उनके घर में अगर कोई बेटी पैदा होती थी ना तो वो उस बेटी को लेके जाते थे मक्का मुकरमा का, जो छोटा सा शहर था, आज जो हम हरम देखते हैं ना, बस तकरीबन वही शहर था मक्का मुकरमा का। कब्रिस्तान देखा है मक्का मुकरमा के किसी ने? क्या नाम है, जन्नतुल मुअल्ला, ठीक है। कब्रिस्तान जो है ना, वो शहर के बाहर बनाया जाता था, शहर के अंदर नहीं बनता था। तो जन्नतुल मुअल्ला जो है, वो जब आप इस तरफ से जा रहे हो, कौन सी अज्जियात की साइड तो नहीं कराती हो, नॉर्थ की साइड से अगर आप हरम की तरफ जा रहे हो ना, तो जन्नतुल मुअल्ला पहले आता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर आपको हरम नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जन्नतुल मुअल्ला वाज आउटसाइड मक्का मुकरमा, ठीक है। तो ये एक कब्रिस्तान था, और एक और भी कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान कहाँ था? वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर था, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड। हमने देखा भी है दूर से ना उसको, जगह को। वो कब्रिस्तान सिर्फ जिंदा बच्चियों का कब्रिस्तान था, बच्चियों का नहीं, जिंदा बच्चियों का कब्रिस्तान था। तो उस कबीले के लोग क्या करते थे कि कोई भी बेटी पैदा होती थी तो उसका अपना अब्बू, उसके अपने फादर, उस बच्ची को लेकर के उस कब्रिस्तान जाते थे, गड्ढा खोदते थे और उस बच्ची को उसके अंदर फेंक देते थे और ऊपर से मट्टी डाल देते थे, ठीक है। वह इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसका जिक्र फरमाते हैं कि वो जिसको दफन कर दिया गया है ना, तो उससे पूछा जाएगा कयामत के दिन कि तुम्हें किस बना की वजह से तुम्हारे अब्बू ने दफन कर दिया था। तो वो भी जिंदा, मार के नहीं दफन करते थे, जिंदा डाल देते थे ताकि वो फिर मिट्टी की वजह से खुद ही मर जाए दफन होने की वजह से। इतना जुल्म, इतना जुल्म छोटी बच्चियों के ऊपर, न्यू बॉर्न बच्चियों के ऊपर। कि एक वाकया जी ने भी सुनाया था, हदीस से पता चलता है, वो वाकया सुनाया था कि एक घर के अंदर ना बेटी पैदा हुई, तो वो जो अब्बू था वो घर में था ही नहीं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था, कहीं गया हुआ था काम वाम से, तो वो चूंकि घर में ही नहीं था ना, तो उसकी अम्मी ने क्या किया बेटी की, बेटी जब पैदा हुई ना, तो उसकी अम्मी ने कहा कि अच्छा, अम्मियाँ जो है वो कभी तो एग्री करती थी अपने हस्बैंड से क्या दफन दफन करते उसको दफन करते, और कभी एग्री नहीं भी करती थी, ठीक है ना। माँ को ज्यादा मोहब्बत भी होती है ना बच्चों से, तो वो जो अम्मी थी ना, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को दफन नहीं होने दूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटी को जो है ना, वो अपनी बहन के घर से दे दिया, ठीक है, बहन को दे दिया, और उसे ये कहा कि जब मेरा हस्बैंड आएगा ना, तो मैं उसे कहूंगी कि मैंने जो बेटी पैदा होनी थी ना हमारे, उसको मैंने खुद ही दफना दिया, खुद ही खत्म हो गया मामला, ठीक है, तो तुम फिक्र ना करो, मैंने खुद ही दफना दिया अपनी बेटी, सही है। तो बहन के घर में दे दिया उसने अपनी बेटी को, और हस्बैंड से जो है वो झूठ बोल दिया ये। अच्छा, अब बहन के घर में वो जो बच्ची थी वो रही और बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, ठीक है ना। अब वो भाई इसकी बेटी तो नहीं थी ना, इसने कहा व्हाई वुड आई केयर के बहन के घर में बेटी उसने नहीं किया जो नहीं किया उसको। तो अब वो बच्ची जो है ना, वो कभी कभी इनके घर पे भी आ जाती थी। अब ये जो था ना, उस बच्ची का जो असल बाप था, इसको पता नहीं था कि उसका बाप, ये उस बच्ची के साथ खेलता था, तो इसको जो है ना, उस बच्ची के साथ बड़ी मोहब्बत हो गई। छोटी बच्ची के साथ खेलते हैं ना तो मोहब्बत हो जाती है, आपको बहुत प्यार आता है बच्चे के साथ, ठीक है ना। तो इसको बहुत मोहब्बत हो गई, बहुत प्यार हो गया, वो बच्ची बड़ी होती गई होती गई होती, हत्ता कि वो 6 साल की हो गई, 6 ईयर ओल्ड हो गई, ठीक है। और इस शख्स को उससे बड़ी मोहब्बत हो गई जो कि असल में इसका बाप था। तो अब जो इसकी माँ थी ना, असल में जो उस बच्ची की माँ थी, ठीक है, उसने ये सोचा कि अब तो मेरे शौहर को ना हमारी बेटी से मोहब्बत हो गई, सही है, तो अब ये नहीं उसको दफन करेगा, तो ऐसा करती हूँ कि मैं बता देती हूँ, अब बता देती हूँ मैं कि ये जो तुम समझ रहे थे ना कि मेरी बहन की बेटी है, ये मेरी बहन की बेटी नहीं, ये तो हमारी अपनी बेटी है, ठीक है ना। उसने इस उम्मीद पर ये बात बता दी कि अब चूंकि मेरे हस्बैंड को उससे मोहब्बत हो गई है, तो अब ये उसको नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ठीक है। तो उसने ये बात बता दी, शौहर ने भी ये बात सुन ली और वो खामोश हो गया, ठीक है ना। उसको ये ख्याल आया, अच्छा मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला, कितना बुरा काम किया, और अच्छा उसको इतनी मोहब्बत है इस लड़की के साथ, तो वो खामोश हो गया उस दिन, ठीक है ना। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, गुस्सा उस्सा नहीं दिखाया, फिर वो वेट करता रहा। एक दिन उसने क्या किया कि अपनी बेटी से कहा चलो हम चलते हैं कहीं, जरा मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी बेटी को लेकर के घुमाने कहाँ लेके गया, वो उसी कब्रिस्तान में लेकर के गया, और वहां पे जाकर के उसने कब्र खोदनी शुरू, ठीक है। अब वो छोटी बच्ची थी ना उसके साथ, कहा अब्बू आप कब्र खोद रहे हैं, चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। उसने अपने अब्बू की हेल्प करनी शुरू कर दी, आइए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, आप एक काम करो, तो क्या पता कब्र खोद रहे हैं किसके लिए खोद रहे हैं, राइट। तो उसने जो है ना अपने अब्बू की मदद भी करनी शुरू कर दी, उठा उठा के मिट्टी बाहर निकाल रही है, उस हेल्प करी, ठीक है। हत्ता के जब कब्र खुद गई ना, तो अब इसके बाप ने क्या किया, इसने उसको धक्का दिया, और वो बच्ची इतनी गहरी कब्र, देखिए आप लोगों ने कितनी गहरी कब्र होती है ना, बड़ा आदमी भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता कब्र के अंदर से। वो बच्ची अंदर गई, अब्बू मैं यहाँ गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, इसके अब्बू ने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू, अब्बू आप मिट्टी डाल रहे हैं, मेरे आंखों में मिट्टी आ रही है, मेरे कपड़ों में मिट्टी जा रही है। मैं वो बोलती रही बोलती रही बोलती रही, और इसने कब्र को बंद कर, इसने कब्र को बंद कर। तो ऐसे लोग हुआ करते थे, इतना जुल्म, ऐसा जुल्म होता था। और जब इस्लाम आया, नबी अलैहिस्सलाम आए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खत्म कर दिया इस तरह के जुल्म को भी, और इस तरह के जितने मजालिम होते थे सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से खत्म करवा दिया, ठीक है। तो भाई दीन इस्लाम ने तो हमारे साथ इतना बड़ा एहसान किया, खुसूसन औरतों के साथ, खुसूसन बेटियों के साथ, खुसूसन माओं के साथ, इज्जतें दोबारा से रिवाइव करी, और हमें दीन इस्लाम ही अच्छा नहीं लगता, हमें यही दीन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातें हमें बुरी लगती हैं, और दीन पे भी अमल करेंगे तो अपना बनाया हुआ कोई दीन होता है, अपनी मर्जी से कुछ बना लेते हैं उस पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए ना। बहन के हस्बैंड ने उसे ध्यान नहीं किया, मुझे नहीं पता बहन के हस्बैंड ने क्या किया, उनका वाकया नहीं बताया था, लेकिन हो सकता है बहन का हस्बैंड भी कोई ना हो, या पता नहीं वो गया हुआ जो भी हो, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड। फिर ये साहब जो थे ना जिन्होंने ऐसा किया, फिर बाद में ये मुसलमान हो गए, और अल्लाह ताला ने फिर माफ भी कर दिया, तो लेकिन ये तो कर दिया तो कितना ज्यादा, ठीक है। बहन के हस्बैंड ने बरी नहीं किया, वही शुरू में बात कर दी थी कि वो या तो उसको एक्सक्राइब नहीं करते होंगे इस वाली चीज को, या कोई, या ये कि कबीला जो है ना ये मर्द से चलता है, ठीक है। हो सकता है जैसे नबी अलैहिस्सलाम का जो कबीला था, तो नबी अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी ना वो दूसरे कबीले से ब्याह करके आई थी, ठीक है। तो शादी होती थी, ये कबाइल के बाहर भी तो शादी होती थी ना, तो अब उस बंदे की जो बीवी थी वो तो उसकी वजह से इसी कबीले का हिस्सा बन गई थी, लेकिन उसकी बीवी की जो बहन थी वो तो जरूरी नहीं है कि वो इसी कबीले के फर्द हो, वो किसी दूसरे कबीले के फर्द होंगे। तो ऐन मुमकिन है कि जो बीवी की बहन जिसके घर पे उसने अपनी बेटी को रखवा दिया था, वो और उसका हस्बैंड जो है वो इस कबीले के फर्द ही नहीं थे। हर कबीला अपनी बेटियों को दफनाता नहीं था, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला कबीला अपनी बेटियों को दफनाता था। तो मक्का मुकरमा के उस साइड के ऊपर ये जगह जो है वो कई सालों तक रही, पता नहीं अब वहां पे कोई बिल्डिंग बनाई है अभी भी नहीं। देखें देखें कितनी वो प्राइम लोकेशन है, वहां पे कितने बड़े बड़े होटल्स बनते हैं, कैसी कैसी जो है ना वहां पर 5 स्टार होटल्स बनते हैं, और इतनी महंगी एक एक लोकेशन वहां की इतनी महंगी है, ठीक है। बिल्कुल, जो सहन इस वक्त जहां तक फैल चुका है उसके फौरन बाद ये वाली लोकेशन आती है, लेकिन जहां पर ये कब्रिस्तान है ना वहां पर आज तक कोई इमारत नहीं बन सकी, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, ठीक है। बाकी हर जगह बिल्डिंग्स हैं, हर जगह होटल्स हैं, और इतने इतने महंगे होटल। वहां पे एसटीसी वालों की एक कुछ टावर्स वगैरह शायद लगाने होंगे आपको, तो वहां पे जो तो खोदा ना तो अंदर से हड्डियां निकली, ठीक है, अंदर से हड्डियां, हालांकि हड्डियां इतने सालों में तो फास्फोरस में बन कन्वर्ट हो जाती हैं।
के
अच्छा,
साथ
ठीक है। तो देखें साइंस क्या कहती है, इट्स नॉट पॉसिबल, इतने सालों के बाद 1400 ईयर्स से ज्यादा गुजर चुका है ना, ये तो पता नहीं कबीला कितने और भी 500,000 ईयर्स पहले से ये हरकतें कर रहा था। 2000 ईयर्स गुजर गए या 1500 ईयर्स गुजर गए, तो हड्डियां फॉस्फोरस बन जाती हैं, ब्लड का तो तस्वीर ही नहीं है कि ब्लड भी रहे। ब्लड वहां पे कैसे है अभी तक, हड्डियां वहां पर कैसे हैं अभी तक, सिर्फ अल्लाह, राइट? तो क्या ये हमारे पास साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान नहीं है सामने, जो हम आज भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं? स्टिल वी हैव डाउट अबाउट दिस रिलीजन, हाउ कम, व्हाई आर वी डाउटिंग दिस रिलीजन? पता नहीं क्या सच है क्या गलत है। आजकल कितने नौजवान मुसलमान लड़के लड़कियां, पता नहीं सच है भी कि नहीं है, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रूथ के लिए जो है ना वो काफी है हमारे दीन के। अच्छा, तो ये जो थे ना, ये क्या करते थे कि ये किसी तरीके से उन कभी जो उनका बस चलता था, क्या करते ना कि ये जिंदा गोर दरगोर होने वाली बच्चियों को ना बचा लिया करते थे, ठीक है ना, और उनको अपने पास ले आया करते थे और उनको अपनी कफालत में रखते थे। अब समहाउ ही यूज टू डू दिस, ठीक है ना, तो वो उनको अपनी कफालत में रखते थे, उनकी शादी का बंदोबस्त फरमाते थे, और बाद में अगर उसके वालिदैन उसको वापस लेने पर रजामंद हो जाते थे तो आप उनकी बच्ची को वापस लौटा देते थे, वरना अपने पास ही रखते थे, ठीक है ना। तो कभी किसी के साथ हो गया कि अच्छा उनको ख्याल आ गया, नहीं नहीं अब हम नहीं करेंगे, वाकई जब कंफर्म हो गया तो फिर ही उनके पेरेंट्स को बच्ची लौटाते थे, वरना नहीं लौटाते थे, अपने पास ही रखते थे, ठीक है। कितनी बड़ी नेकी का काम ये नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले भी करते, ठीक है, लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं होता, हर बंदे के लिए मुमकिन भी नहीं होता। आम आदमी जो होते हैं वो शैतान से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और शैतान फिर उनसे बहुत बुरे बुरे काम करवाता है। अच्छा, सईद बिन जैद जो है वो, अच्छा इनके जो बेटे थे सईद, उनकी इस्लाम कबूल करने का वाकया पढ़ के बस हम आज की क्लास खत्म कर देते, टाइम तकरीबन खत्म हो ही चुका है, कि इनके जो बेटे थे जैद के बेटे सईद, ठीक है, तो उनके इस्लाम लाने का वाकया बड़ा मशहूर, नहीं 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 बल्कि सॉरी 1 मिनट है, अच्छा इनका, इनके इस्लाम लाने का वाकया नहीं है, लेकिन इनके इस्लाम लाने के बारे में इतना ही है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया ना, तो इनके वालिद जो थे वो तो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन उनकी तौहीद का असर जो है वो उनके बेटे के ऊपर था, ठीक है। तो अरबी का एक मकोला भी है आलमन ये के अलवलदु सिर्रु लि अबीही, के बाप अगर नेक होता है ना तो उसका बेटा जो होता है वो अपने बाप की रिफ्लेक्शन होता है, या बाप का छुपा हुआ राज बेटे के अंदर हो, ठीक है। तो अलवलदु सिर्रु लि अबीही, गोया के बाप जो है, बेटा जो होता है ना वो अपने बाप की रिफ्लेक्शन होता है, तो इनके ऊपर भी असर आया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सईद रजान ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, और आपके साथ साथ आपकी अहलिया जो फातिमा बिनते, कौन थी, फातिमा बिनते अब्बा, ठीक है, यानी उमर रजान की सगी बहन फातिमा, क्योंकि उमर बिन खत्ताब और फातिमा बिन खत्ताब ये दोनों सगे भाई बहन थे, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो सईद की अहलिया थी, वाइफ थी, तो उन्होंने भी इनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। चुनाचे आप और आपकी अहलिया इस्लाम लाने के एतबार से उन 10 खुशनसीब हजरात में शामिल हैं जो बहुत शुरू शुरू में मुसलमान हो चुके थे, ठीक है। यहां तक हम आज की क्लास रोक देते हैं, फिर अगली क्लास हम शुरू करेंगे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्लाम लाने का वाकया, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी है, ठीक है। कोई सवाल हो या कोई और कमेंट कोई देना चाहे तो अभी आप बता सकते हैं, वरना समाचार को चलें फिर हम क्लास आज की खत्म करते हैं। वाफिर दावाना अलहमदुल्लाबिलमीन, असल वरह।